फिर इसके बाद अब मैनर्स, अखलाकियात में क्या सिखाना है, नंबर एक वला तुसइर खद्दक लिन्नास, और तकब्बुर की वजह से लोगों से गाल ना फुलाओ, और दूसरा वला तमशि फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ कर ना चलना, क्यों, इसलिए कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह ताला किसी फखर करने वाले और शेखी खोर को पसंद नहीं करता। अब यहां भी जरा गौर कीजिए, तीन बातें बच्चों को मैनर्स में सिखाई, मुंह फुला के बात ना करो। सार कहते हैं एक बीमारी को कि जिसमें ऊंट की गर्दन जो है ना वो मुड़ जाती है, वो गर्दन को एक खास एंगल से बात मोड़ नहीं सकता। अल्लाह ताला ने यहां ये लफ्ज इस्तेमाल किया, क्यों कि लोगों से, और खद कहते हैं ये गाल को, चिक्स को, कि अपने गालों को लोगों से मोड़ो ना। जरा आज के दौर में देखिए कि अमूमन बच्चे, यंग टीनेजर खासतौर पे, उनके रवैये कैसे हैं। घर में कोई आ जाए उनको परवाह नहीं, माँ की दोस्त है तो उनको क्या लगे ये तो हमारी नहीं, फोन उठाएंगे वो मम्मी घर पे नहीं है, खुदा हाफिज। ये क्या है, यानी मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो रुझान है ना वो, क्या आज गर्दने मुड़ी भी नहीं दिखती, क्या आज लोगों से बात करने का रंग ढंग, रिश्तेदारों से कैसे बात की जाती है, अंकल आंटी के रिश्ते में सारे ही लफ्जों को समेट दिया गया और वो मोहब्बतें नापैद हो गई। बच्चों को इखलाक सिखाने में सबसे पहली जो चीज है वो क्या सिखाई, कि लोगों से मुंह ना फुलाओ, क्योंकि मुंह कौन फैलाता है, जो मुतकब्बिर होता है। एक तो मैं इसमें देखती हूँ कि रवैये इस पे असरअंदाज जरूर होते हैं, सोचें जो दिल में आता है ना, मसलन आप देखिए कि जिसको बचपन से ही आप ये एहसास दिलाते रहे तुम ठीक हो, तुम अच्छे हो, तुम जो कहो वो ठीक है, मसलन आप देखिए ना कि एक बच्चा आधी रात को भी एक चीज उठ के मांगता है तो आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। हो सकता है उसी घर में बूढ़ी दादी हो, उसकी दवा आनी हो तो वो उसको ना दी जाए, या वो के अच्छा कल आ जाएगी, या वो बेचारी सबर के मारे ना बताए, लेकिन बच्चे के लिए रात को कई दफा आधी रात को आइसक्रीम के लिए भी जगाड़ी निकलेगी, बाज दफा उसके लिए कोई, अगर कोई उसकी कोई पेपर पेंसिल रबड़ है तो वो भी आता है। आहिस्ता आहिस्ता हमने उन बच्चों को क्या फीडबैक दिया, तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल अक्लमंद हो, तुम्हारी हर बात ठीक है, क्योंकि हमने उसको नो तो सिखाई नहीं। दुनिया में भी जिस इंसान की लोग सारी बातें मानने लग जाए ना तो वो मुतकब्बिर हो जाता है, वो कम से कम ये जरूर सोचने लगता है कि मैं ठीक हूं, मेरी बात गलत नहीं है। अब आपने उसको कर दिया अना खैरूं, मैं सबसे बेहतर हूं, तो बड़े होके वो किसी को खातर में लाएगा। आज देखिए कि जब बच्चे बात करते हैं माँ बाप से ही कैसे करते हैं, मैं तो कभी किसी के भी बच्चे को देखूं ना कि माँ से बोल रहा हूं जी, तो मैं तो टोक देती हूँ, चाहे वो माँ को बुरा लगे, इस तरह नहीं टोकती कि बुरा लगे, पॉइंट आउट करती हूँ बेटा मम्मी से कैसे बोलते हैं। बाज दफा मैं देखती हूँ कि माएँ आती हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, जब क्लास के लिए, तो माँ ने बच्चे का बैग पकड़ा होता है, मैं बाद में उनको कहती हूँ देखिए ये बहुत बुरी बात है, आप इसका बैग नहीं पकड़ा करें, 4-5 साल का बच्चा अपना बैग खुद पकड़ सकता है, ना करें इतना भारी उसको। फिर आप देखिए कि माँ बच्चे के जूते उतार रही होती है, ये आप अपनी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं। बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप के सामने नरम बात करने वाला होना चाहिए। इंशाल्लाह हम इसी सीरीज के आखिरी लेक्चर में सुनेंगे कि माँ बाप के साथ कैसे मैनर्स है, वहां आपको कुछ कहानियां बताऊंगी कि असल माँ बाप के साथ बंदे का सलूक कैसा हो, लेकिन यहाँ चूंकि तरबियत का नुक्ता है तो बच्चे के साथ खुद अपनी इज्जत करवाना, उसकी बात की इज्जत करवाना, ये माँ का काम होता है। जितनी माँ समझदार होगी उतनी ही वो बच्चे के साथ बात करेगी, अच्छी तरह रखेगी कि उसको मुंह फुलाने वाला नहीं, रिश्तों की पहचान हो, बात करने का ढंग हो। बाज़ दफ़ा तो इतना दिल जल जाता है किसी की बात सुन के कि ऐसे बच्चे, यानी इनको बिल्कुल भी लिहाज नहीं है, और बाज़ दफ़ा हम इस पर खुश होते हैं कि आज यहाँ के बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। बदतमीजी का नाम हमने कॉन्फिडेंस रख दिया, वो हमारे पास बैठते नहीं वो, और इसकी वजह भी शायद यही है ना कि देखिए बचपन से हमने फर्क डाल दिया। पहले क्या होता था, माँ बाप कहीं जाते थे तो बच्चे भी पास खेलते रहते थे, ठीक है शोर आता था लेकिन बच्चे बड़े आपस में मिक्सिंग थे। अब मामला क्या बिगड़ता है कि बच्चों को तो हमने अलग महफिलें सजा दी, एक पार्टी में आए हुए माँ बाप को नहीं पता क्या हो रहा है, बच्चों को नहीं पता क्या हो रहा है, जनरेशन गैप बढ़ गया ना, तो लिहाजा बच्चों को इंसान शनास बनाना है। अपने घर में आने वाले एक एक बंदे से बच्चे का तारुफ करना, उसको सलाम करना, ये बच्चे का एक अदब होता है। इसके लिए शुरू से बात होगी, बेटा आंटी को सलाम करो, पूछो इनको, इनका बैग उठाओ, बचपन से। आप देखिए जितना बच्चे की तरबियत बचपन से कर सकते हैं उतनी तो दूसरे से नहीं कर सकते बड़े होके। जूते उठवाया करें, चलो बेटा पुट शूज ऑन देयर, चलो खाना लाओ, पानी लाओ। इन बच्चों को इतना मसरूफ कर लें अपने साथ छोटे छोटे कामों में कि इनका जहन ही बेकार चीजों पर ना जाए। फिर आप देखिए, वला तम शिफिल अर्दी मराहा, जमीन पे अकड़ के ना चलो। जरा गौर कीजिए कैसी चाल की बात की कि तुम अकड़ के ना चलो, क्योंकि अकड़ के चलना क्या दिखाता है? तकब्बुर, बड़ाई। एक तो यहाँ के कपड़े ऐसे हैं, ये जो मैं वला तम शिफिलर थी मरहा पढ़ती पढ़े आए थे ना, ये मुझे याद आती है जब मैं किसी को टाइट पैंट्स में और सांस ना लेते हुए हालत में देखती हूँ। आप देखिए कि पोस्चर ही नहीं नरम होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज भी वो वक्त इतना दूर का नहीं है कि बच्चियां जब जवान होने के करीब होती थी तो हर वक्त घर के बड़े माँ नानी दादी पीछे पड़ी रहती थी, सीधी खड़ी हो, झुक के खड़ी हो, चादर लो, दुपट्टा लो, स्कार्फ सही करो। और इस वक्त आप जरा एक गौर देखिए, गौर से सोचिए कि जो इस वक्त यूथ में चलने का अंदाज है वो कैसा है। क्या मराहा वाला नहीं, अकड़, गर्दन तनी हुई, पोनी टेल बनी हुई पीछे, यानी अपने ऐसे लगते हैं कि किसी की परवाही नहीं है, किसी की कोई होश ही नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है ऐसी चाल से मत चलो कि तुम जमीन को तो नहीं फाड़ लोगे, यानी तुम इसी के ऊपर रहोगे, तुम नीचे तो नहीं जाओगे। एक शख्स तकब्बुर की चाल चला था, कारून, अल्लाह ताला ने जमीन फाड़ के उसको उसके अंदर गर्क कर दिया था। और अब भी कहते हैं कि हर रोज वो एक घोड़े की मतलब कद के बराबर जमीन में घुस रहा है। अल्लाह को तकब्बुर वाली चाल नहीं पसंद। कैटवॉक क्या है, मॉडलिंग क्या है, यानी जिस तरह कर करके दिखाते हैं, चल चल के दिखाते हैं, ये क्या है? ये सारी चीजें तकब्बुर की हैं। इंसान अपने आप को बड़ा समझता है ना, वरना आजजी कौन से आती है जब अल्लाह की तरफ रजू होता है। माँ के पेट में अब देखिए कि बच्चा पूरा कर्व्ड होता है, अंदर की तरफ झुका होता है, पीछे तरफ भी हो सकता था, अकड़ा हुआ भी हो सकता था, अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन ये रवैये होते हैं, जितना ज्यादा किसी को आप खुद पसंद बना देंगे ना, वो उतना ही ज्यादा आपसे भी दूर होता जाएगा। और फिर आप देखिए कि हम कभी ऐसे अदब सिखाते भी हैं तो इसलिए कि लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों की नजरों में बनना है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, इन्नल्लाहा, यानी इसे क्या पता चला कि ये मैनर सिखाने हैं, ये अदब सिखाने हैं, क्या कह के कि अल्लाह को ये नहीं पसंद। हम क्या कहते हैं, अमूमन माएं बच्चों की तरबियत करती भी हैं तो देखो लोग क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेंगी, फुलां क्या कहेंगे, ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहेगा। इस बात की तरफ इशारा दिलाना है कि अल्लाह को क्या पसंद है। अगर हमने अपने बच्चों को ये चीज़ बता दी कि वो ये सब काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उजागर हो जाएगी। फिर आप देखिए कि अगला अदब, वक्सिद फी मशरिका, और अपनी चाल में एतदाल रखो। चलने का तरीका इस्लाम सिखा रहा है, कैसे चलते हैं आज हमारे बच्चे, दरवाजा खुलता और ऐसे लगता है कि जैसे कोई तूफान आ गया, कहीं चार बच्चे मिल जाएं तो मुझे लगता है कि घर की बुनियादें हिलने लगती हैं। वजह क्या है कि एतदाल नहीं, वजह क्या है इसकी, एक और भी वजह, जो खुराक खिलाते हैं, जो पेप्सी पिएगा वो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे, थ्रिल, हरकत, चारों तरफ तो हरकत है। टीवी खोल लें तो म्यूजिक ऐसा है कि जिसको देख के लोग खुद ही झूमने लगते हैं, हिलने जुलने लगते हैं। यानी मैं हैरान हो जाती हूँ कि हम जिस दौर में पल रहे हैं ना, वाकई अल्लाह की रहमत ये कि हम बचे हुए हैं। मैं किसी दिन यानी ग्रॉसरी पे गई तो ज़रा कभी कभी जाना पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ होती है मजबूरी, तो मैंने नहीं नोट किया, लेकिन ज़रा कि म्यूज़िक चल रहा होता है, ना मुझे समझ आ रहा था ना मुझे पता था क्या। तो मैं एक आइल में अंदर आई तो मैंने देखा एक लेडी थी, उसके साथ उसका बच्चा भी था। लिटरली वो औरत अपनी कॉट छोड़ के तो पूरा यानी उस जो म्यूजिक था उसकी धुन पे ऐसे हिलजुल के जैसे डांस की सूरत कर रही थी, उसके एक्शंस मुझे लगा उसको देख के कि उसको कितना मजा आ रहा है। और पास उसकी छोटी बेटी थी, उसकी इस हरकत से मैंने महसूस किया कि अच्छा म्यूजिक लगा हुआ था, मुझे याद पता नहीं चला पहले, लेकिन वो बिल्कुल मदहोश हो गई हुई थी अपनी चीज़ों से, बेनियाज में कहाँ खड़ी हूँ, और वो बिल्कुल अपने एक्शंस के साथ डांस कर रही थी। और ग्रोसरी स्टोर जहाँ दिन में हजारों लोग गुजरते होंगे, तो मैं सोचा ये बच्ची क्या देखेगी, یعنی وقصد فی مشجکا یہ ایک صرف چال نہیں ہے، یہ اندر کے ٹھہراؤ اور سکون کا نام ہے، اطمینان، سکون. جب ہائپر چیزیں کھائیں گے تو ہائپر ہوں گے، بڑے ہوں گے، یعنی جو ہی ان کا سیٹ اپ ارد گرد ہے، جہاں جوانی میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں ماحول ہی سارا ایموشنز کو بڑھانے والا اور سیکس اور شور، تو وہ کیا ہوگا، چال میں درمیانہ پن نہیں رہے گا. وقدت من صوتک، اپنی آواز پست رکھو. یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ آواز پست رکھو کیا مطلب ہے اس کا، کہ اونچی نہ بولو؟ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ تھونس جمانے والا انداز نہ ہو. بعض میں نے دیکھا ہے ماں بات کر رہی ہوتی ہیں اور بچے تھے ممی ممی میری بات، پہلے اس کے ہاتھ ہلائیں گی، ممی پلیز، ممی می، اس کا منہ اپنی طرف موڑیں گی. اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے فوراً روک دیں اس کو. یعنی یہ بات کہ میری سن لو، یہ ہے وقت دود من صوتک کا اپوزٹ. بس جو میں کہہ رہی ہوں میری بات صحیح ہے. دھونس جمانے کا انداز، ہر ایک کو اپنے آپ کو بس یہ محسوس کرنا کہ میں اہم ہوں، اب میری بات آپ سن لیں. آپ دیکھیے کہ بچوں کو اگر بچپن سے یہ بولنے کا ادب سکھا دیا جائے نا، تو میرا خیال ہے کہ ماؤں کے بعد میں 50% مسائل جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ماں تو خود بھی ابھی آہستہ نہیں بولتی، ماں کا تو خود بھی ابھی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، چیخنے کا انداز ہے، چنگھاڑنے کا انداز ہے. کتنی بری مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، سب سے مکروہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اب دیکھیں کہ گدھا سمبل ہوتا ہے بیوقوفی کا، عقل نہیں ہوتی اس کے پاس، مینرز نہیں ہوتے. اگر آج ہم ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بھی تو کچھ ایسی ہی باتیں دکھتی ہیں نا، کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو تربیت میں کمی آتی ہے اور پھر بچوں میں یہ برے اخلاق جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. تو ساری باتیں، یعنی اگلی باتیں جو ہیں، اس کا تربیت اولاد سے تعلق نہیں بلکہ ماں باپ کے اپنے عقائد اور خیالات سے تعلق ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ تربیت کا عمل ایک سائنٹیفک عمل ہے، اگنورنس کا عمل نہیں ہے کہ ایسے ہی بچے پیدا کر لو اور ایسے ہی پال لو. میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک جرم ہوگا کہ بچہ پیدا تو انسان کر لے لیکن اس کی تربیت کرنا نہ آتی ہو. اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے. اپنے اندر جب اچھی بات آئے گی تو پھر آئے گی. کچھ میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ پوائنٹس اور شیئر کروں کہ کس طریقے سے پھر ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں. پہلے ان آیت کی تلاوت سنتے ہیں، آیت نمبر 19 تک، یعنی شروع سے لے کے 12 سے لے کے 19 تک، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں گے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
चलिए अब थोड़ी सी कुछ और चीजें देखते हैं. मैं चाह रही थी कि आपके सामने एक दो रिपोर्ट और रखूं और उसके बाद कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से अपनी आंखों की ठंडक बना सकते हैं और कुछ अमली बातें. लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है अगर उसको सामने रखें तो कहते हैं कि एक शख्स थे, ये भी इस्लामाबादी से रिपोर्ट आई है, फूड डिपार्टमेंट में उन्होंने 16 करोड़ का घपला किया, यानी खुर्द बुर्द किया, फ्रॉड किया. आखिर पकड़े गए, कहाँ तक ना पकड़े जाते. सजा की जब मुकदमा चला तो उनको दिया गया कि या तो 15 साल कैद व मुशक्कत होगी या फिर जुर्माना दे दें. तो बच्चों ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे. उन्होंने कैद में बाप को डाल दिया और वो जेल की चार दीवारी में अपने यानी गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं और बीवी बच्चे उसी माल से गुलछड़े उड़ा रहे हैं. यानी अब देखिए कि ये सारा मामला क्या है. और कहते हैं कि दो लोग थे उसमें इन्वॉल्व, दूसरे जो हैं वो दूसरा शख्स जो, तो वो भाग गया बाहर के मुल्क में, पीछे से बीवी ने खुला ले ली और कहीं और शादी कर ली. दुनिया में ये लोग काम नहीं आते. और वो शख्स जिसने इतना बड़ा जुर्म किया वो आज किसी वेस्टर्न मुल्क में शराब खाने में बर्तन धो रहा है और उसी माल से जो कमाया था बीवी और बच्चे जो हैं वो ऐश कर रहे हैं. बज़ाहर तो लगता ना कि ये औलाद बड़ी जालिम है, लेकिन औलाद क्यों ख़राब होती है ये हमारे सामने खुद ही बात जो है आनी चाहिए. इसी तरह एक और किसी की बात थी कि मिनिस्टर हैं, दो भाई थे आपस में और बाप के नाम पे बहुत जायदाद है. बाप ने दूसरी शादी कर ली तो बेटों को ये ख्याल हुआ कि कहीं ये हमारी रकम जो है दूसरी तरफ ना चले जाए. बाप को उन्होंने घर में कैद कर दिया और उनको खाना पानी बहुत महदूद दिया जाता और हर वक्त यही मजबूर किया जाता कि साइन कर दो. और इसी हालत में वो सिसक सिसक कर मर गए. उनमें से वो दोनों बेटों में एक बाहर चला गया, किसी अंग्रेज मतलब कोई भी वाइट वुमेन थी उससे शादी की और वो सारा माल जो बाप से धोखे से लिया था वो सब इस वक्त बीवी के पास है और वो बकायदा उसके ऊपर यानी मामला रखती है. औलाद नहीं हुई, किसी का बच्चा अडॉप्ट किया और वो सारा माल अब उसको दे रही है, ना घर में रहती है ना कुछ. यानी जो अपने माँ बाप के साथ इंसान करता है वो दुनिया में ही दूसरे के साथ पे हो जाता है. और जो दूसरा बेटा था उसकी बेटी को, बेटा कोई नहीं था, बेटियां ही थी और वो इस वक्त कह रहे हैं कि डिप्रेशन का मरीज है. और यानी ये इतनी ज्यादा कहानी है कि पहले तो मैंने सोचा था सारी शेयर करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बात से भी बात तो समझ आ ही जाती है ना कि आज हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान मोहब्बत का जो बॉन्ड था वो कमजोर हो गया, मुफादात का रह गया. हमने इनको मुफाद परस्त कर दिया ना, तो वो बात में हमें खुद ही हमारी ही बातों को हमारे सामने लाने लगे, उनके मामले हमारे साथ बिगड़ने लगे. किसी एक और की बात थी कि एक औरत है शुगर की मरीज हुई, पाँव की उंगलियां, कोई जख्म हुआ तो पाँव की उंगलियां कट गईं. अब वो घुटनों की भी तकलीफ थी, चलने की कोशिश करती तो गिरती और उनका बेटा जो है अगर यानी माँ को कहीं जाना होता साथ जाने में देर करती तो माँ की पिटाई करता है कि तुम देर से आती है और क्या हालात हैं. अल्लाह अकबर, कहानी यही है कि हमने खता कहाँ की. तो कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी कि क्या करें फिर. देखिए कि ये मौजू तो इतना वसी है कि इस पर किताबों की किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन हम इस वक्त एक प्रैक्टिकल चीज़ जिस पे यानी फ़ायदा लेना चाहते हैं वो करने की ज़रूरत है. तो पहली तो बात यह है कि दुआ करें. दुआ जो है ना वो बहुत फ़ायदा देती है, लेकिन दुआ जो है ना वो करने में देर नहीं करनी चाहिए. अगर अभी कोई बात सुनने वालों में कोई अनमैरिड है ना, तो अपने बच्चों के लिए दुआएं शुरू कर दे कि जब मेरी शादी होगी फिर बच्चे होंगे तो अल्लाह ताला उनको मेरी आंखों की ठंडक बनाना. रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि व अज़अलना लिलमुत्तकीना इमामा. क्या हरज है इस दुआ के पढ़ने में? जन्नत भी तो इस दुनिया में रह के मांगते हैं ना, तो अभी तो नहीं जा रहे ना. तो लिहाजा वक्त से पहले अच्छी दुआएं, शादी हो चुकी है फिर भी मांगे. रब्बी हबली मिन अस्सालिहीन. अंबिया कराम का ये उस्वा रहा है कि उन्होंने नेक औलाद के लिए दुआएं की थी. बाज़ दफ़ा बच्चों के मामले में परेशान की भी माएँ, यानी जो बच्चों ही के हाथों से दुखी हुई होती हैं, वो जो हैं कैसे मामले के साथ उनका होता है कि वो फिर दुआ भी नहीं करती बल्कि बददुआ करने लगती हैं. तो ऐसा नहीं करना, दुआ करनी है. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में मौजूद है. इबादुर रहमान की दुआ जो भी आपको बताई, रब्बना हबलना वाली, ये ज़रूरी है. दूसरी चीज़ फिर जो औलाद की तरबियत में इंसान को फ़ायदा दे सकती है, जिसका जिक्र इब्तदा में हुआ था कि रिश्ते के इंतखाब में अच्छे साथी को पाना. शादी के वक्त में दीन की बुनियाद. अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कुछ लोगों के जहन में कि अब तो हो गई शादी, अब क्या करें? तो फिर उसी साथी को दीन की तरफ लाने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है. फिर अगली बात इसी के साथ ही लिख लें तो बेहतर है कि माँ बाप खुद दीनदार बन जाएं. जब हम नेक होते हैं तो बच्चे भी नेक होंगे. हम सच बोलेंगे तो बच्चे भी सच बोलेंगे. हम झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे. फिर उसके बाद देखिए कि जब रिश्ते का इंतहाब अच्छा हो जाता है तो उसके बाद अगला मरहला क्या होता है शादी का. शादी के मौके पे इसराफ से बचाया जाए अपने आप को, यानी गैर शरई चीज़ों से इज्तनाब करना. ये आने वाली नस्लों पे असर डालता है. मत सोचिए कि ये बच्चे जो हैं ये किसी चीज़ को असर नहीं लेते. ये दुनिया में आने से पहले ये नहीं लेते तो अल्लाह ताला तो हमारे साथ इस मामले को रखते हैं. फिर उसके बाद अगला जो एक हक बनता है बच्चे का कह लें, या जो नस्लों को संवारने में फ़ायदा देगा, वो क्या है कि जब शौहर बीवी की मुलाकात हो तो उस वक्त दुआ का इख्तमाम करना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई थी कि जब कोई शौहर अपनी बीवी के पास आए तो दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना. ए अल्लाह, हम दोनों को शैतान से दूर रखना. गोया की एक दुआ है क्या कि हम भी इस ताल्लुक में हदों से न बढ़े और शैतान को उस बच्चे से भी दूर रखना जो हमें इससे मिल जाए. आपने फरमाया कि अगर इसके बाद उस मुलाकात से कोई औलाद हासिल होती है तो अल्लाह ताला उसको शैतान से दूर रखेगा. कितने लोग हैं, हर एक अपने आप से पूछे, कितने शादीशुदा कपल हैं जिनको ये दुआ आती है, और आती है तो पढ़ते भी हैं. कब आखिरी बार पढ़ी थी? तो फिर नस्लों के बिगाड़ का रोना क्यों? कसूर तो अपना ही है. फिर इसी तरह इससे अगला नुक्ता जिसका ताल्लुक बच्चों के अच्छे अखलाक से है, शौहर बीवी के जिस्मानी ताल्लुक में हद से बढ़ना, यानी गुनाह की चीज़ें उसमें शामिल हो जाए, इसका भी बच्चों पे असर आता है. अगर आप देखिए कि अपनी ज़िंदगी में हम अपने ऊपर काबू नहीं पा सके तो बच्चे हमारी बात कैसे मानेंगे? ये सारी चीज़ें पैदाइश से पहले ही असरअंदाज होने लगती हैं. किस तरह से मामलात होते हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, कैसे हम करते हैं, चाहे ये बंद कमरे की कहानियां हो, लेकिन अल्लाह ताला खोल के रख देता है औलाद के बिगाड़ की सूरत में. तो लिहाजा जितना फितरी ताल्लुक हो उतना ही इसका असर औलादों पर होगा. फिर उसके बाद अगली चीज़ जो है कि माँ मिसाल है कि अब इसी तरतीब को आगे बढ़ाते हैं कि माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ की हरकतें हैं वो बच्चे पे असरअंदाज होती हैं. मसलन अगर माँ जो है कोई अगर गलत काम करती है तो उसका असर बच्चे पे जरूर आता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई थी और उसने बच्चा छोटा सा उठाया हुआ था, तो कहने लगी कि मेरे बेटा हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि इसकी अच्छी तरबियत करूँ, तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बच्चे को देख के कहा कि तुम ने देर कर दी। देर कैसे कर दी? कहने लगे अगर तुम वाकई इसकी बेहतरीन तरबियत चाहती थी तो तब आती जब ये तुम्हारे पेट में था। आज साइंस ने ये बता दिया कि बच्चा माँ के पेट में असरात कबूल करता है, रोता भी है, हंसता भी है, ख्वाब भी देखता है। और एक खबर ने यह भी साबित कर दिया कि बच्चा रो रहा है, पैदा हुआ है, चुप नहीं हो रहा। सॉरी बच्चे रोते हैं लेकिन वो चुप नहीं हो रहा। और कब चुप हुआ? जब उसके हलक में शराब के चंद कतरे डाले गए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के साथ वो भी आदि हो गया था। अब बाहर आया तो नशा टूटा, तो फिर शराब मिली। तो जब बच्चा माँ के पेट में शराब का आदि हो सकता है तो फिर वो गानों का आदि नहीं होगा? क्या वो झूठ और गिफ्तों का आदि नहीं होगा? मुझे ऐसे लगता है हम खुद नहीं बदलना चाहते, बस अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं हुआ। फिर इसके बाद बाकी चीज़ें वही हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उस वक्त के कुछ मरहले होते हैं जो सबको मालूम है। बच्चे के कान में अजान देना, खुट्टी देना, अकीका करना, फिर उसी तरह बच्चे का सर मुंडवाना, उसके बालों के बराबर चांदी का सदका देना, और इसके बाद उसका अच्छा नाम रखना, ये बच्चे पे असर आता है। आप देखिए कि नाम इंसान सबसे ज़्यादा सुनता है अपना, और नाम अच्छा होगा ना और रूह के साथ पुकारा जाएगा तो असर आएगा। बस आप देखिए, आप किसी को कहें साइमा, रोज़ा रखने वाली, अब उस साइमा को अपना मानी पता हो तो उसके दिल में आएगा ख्याल रोज़ा रखने का कि नहीं? साजिदा, सजदे करने वाली। हम तो नामों को भी सही तरह प्रोनाउंस नहीं करते, उसकी रूहानियत बरकरार नहीं रहती। अब इसकी जगह आप किसी का नाम फिरौन रखें, क्या तसव्वुर आएगा? इबलीस रखें तो कैसा तसव्वुर आएगा? तो लिहाजा बच्चों का अच्छा नाम करना रखना। फिर उसके बाद खतना करना लड़के का, ऑफ कोर्स इसका भी असर आता है, अल्लाह के नबी सल्लम की बताई हुई कोई बात भी गलत नहीं। फिर माँ का बच्चे को दूध पिलाना, ये भी इंशाल्लाह तलागे तक फ़ायदा जाता है इससे। फिर इसके बाद यानी औलाद की तरबियत करना बचपन से। आप देखिए कि जो शुरू के साल होते हैं ना, यानी समझें कि पैदाइश से लेके 3-4 साल की जो मुद्दत होती है ना, ये ना समझी की उम्र होती है। इसमें बच्चे को मोहब्बत देनी होती है, या आप लिख सकते हैं एक जैसे एज वाइज, यानी बचपन से लेके तकरीबन 4 साल की जो उम्र बनती है ना, 4 से भी बल्कि पीछे ही जाएं तो ये मोहब्बत की उम्र होती है। बहुत ज़्यादा नसीहत नहीं करनी चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि अच्छे तरीके से अखलाक के साथ उनकी तरबियत करें। उसके बाद का जो दौर शुरू होता है तकरीबन समझ लें कि 10-12 साल तक, ये समझाने का दौर होता है। सख्ती कर सकते हैं, अदब सिखा सकते हैं, तादीब यानी अदब सिखाने के लिए कुछ सजा दे सकते हैं। इसके बाद जब टीनेज शुरू होती है ना, 13-14 साल से ऊपर, तो ये फिर दोस्ती के दौर होते हैं। और फिर 18-16-17 साल की उम्र जो ये शादी की उम्र होती है। तो लिहाजा हमारा हाल क्या है कि बचपन में बच्चों के खूब लाड देखते हैं, फिर जब वो बिगड़ जाते हैं, जो मोहब्बत की उम्र थी वो लाड तरबियत की उम्र थी वो लाडों में गुजर जाती है, और जब 14-12 साल के होकर हमारे लिए नाकाबले बर्दाश्त होते हैं तो उठते बैठते उनको ताने देते हैं। तरतीब उलट गई, जब प्यार के दिन थे तब मोहब्बत कर दी, जब मोहब्बत यानी सख्ती कर दी, और जब सख्ती के दिन आए तो मोहब्बत में रहे, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह ज़ाहिर है कि वो तरबियत के मरहले तो सब जाएंगे, दीन की तालीम की उतनी अहमियत रखी जाए जितनी दुनिया की अहमियत है। ये भी एक बड़ा गहरा नुक्ता है। अगर अपने बच्चों को इस चीज़ का एहसास हमने दिला दिया तो आप देखिए कि वो ज़रूर ही दीन को कबूल करेंगे। हमारी तरह नहीं होना चाहिए कि रस्म पूरी करने के लिए हफ्ते में एक दिन दीनी तालीम है, और वो भी वो देने वाले हैं जिन बेचारों को सिर्फ किताबें पढ़ने की हद तक तो इल्म है लेकिन अपने अंदर रूहानियत नहीं या अल्लाह की किताब नहीं। तो बच्चों को जितना ज़्यादा यानी तरबियत की जा सके उसकी अच्छे से अच्छे तरीके से की जाए। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो बच्चों को फ़ायदा देती है अच्छी तरबियत उनकी करने में, वो क्या है कि बच्चों को हलाल के लुक में खिलाया जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो बहुत ही ज़्यादा फॉरगॉटन है। हमारे बच्चे अगर हलाल खाएंगे या हम खाएंगे तो वो अल्लाह के फरमा बरदार होंगे। अगर हमारे घर में आने वाली चीज़ें सही नहीं तो फिर आप याद रखिए कि खबीस से तैयब कभी नहीं आता। फिर इसी तरह एक और नुकता इसमें ये होता है कि आपके हमारे घरों में आने वाले लोग मुत्तकी हों, सोहबत आपके जो मिलने वाले लोग हैं जिनका आपकी गैदरिंग्स होती हैं वो लोग कैसे हैं, इसका बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चों की तरबियत पे। क्योंकि बाद दफा आप तो पूरी कोशिश कर लेते हैं लेकिन कोई एक ही ऐसा आता है घर में कि वो सारी मेहनत जो है वो आपकी ज़ाया कर देता है। तो इसके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि दोस्ती अच्छे लोगों से हो, वो अच्छी तरीके से उनकी बात यानी उसको फ़ायदा ले। फिर इसके बाद एक और इसमें नुक्ता जो है वो क्या है कि माँ बाप के कॉल और फेल में तजाद ना हो, जो कहें बच्चे को वो करके दिखाएं, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होते हैं। अगर वो मेहनती होंगे तो बच्चे भी मेहनती होंगे, अगर वो यानी नहीं मानेंगे तो दूसरे भी नहीं मानेंगे। फिर इसी तरह से एक और चीज़ वो है कि घर मस्जिद से करीब हो। अब मस्जिद हो या कोई भी तालीमी इदारा हो, ये दोनों चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे आज के दौर में यहाँ जैसे हम लोग रहते हैं गैर मुस्लिम मुल्कों में, तो ये बड़ा अहम नुक्ता है। देखिए कि मस्जिदें या दीनी इदारे लोगों की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो कहीं भी हम मूव होते हैं तो हम अमूमन वहाँ के स्कूल्स देख रहे होते हैं, वहाँ का स्टेटस देखते हैं, शहर कैसे है, इलाका कैसा है। तो ये चीज़ बहुत अहम है कि जितना कोई दीनी जगह करीब ऐसी हो जहाँ उनकी तरबियत हो सके, दिन में 5 बार नमाज के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे भी उनको फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ यह है कि बच्चों को तरबियत के अंदर ऐसा उनके उनसर कायम किया जाए कि वो अपनी उम्र के साथ साथ यानी उस दौर की जिम्मेदारियों को समझें। बस दफ़ा ये होता है कि हम बच्चों को बच्चा ही रखते हैं, यानी बस दफ़ा माएँ कहती हैं वो हमारा बच्चा है, उसको कुरान पढ़ाना है। अच्छा भाई वो बच्चा है, कितना बड़ा है? वो 18 साल का। तो फौरन ही इंसान परेशान हो जाता है कि ये बच्चा है। हर उम्र के कुछ तकाजे होते हैं, उन तकाजों को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इसी तरह देखिए कि जवान होते हुए जो बच्चे हैं यानी जो मिसाल है कि बिल्कुल यंग हो गए और टीन एज में पहुंच गए, उनके अंदर कुछ फिजिकल तब्दीलियां आती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों को समझते हुए बच्चों के साथ दोस्ती की जाए। बेटी है तो माँ दोस्ती करे, बाप है तो वो बेटे से दोस्ती करेगा, और फिर उसको यानी अच्छे तरीके से गाइड करना। इस मौजू को ये भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, और इतना बेबाक भी नहीं हो जाना चाहिए कि फ़र्क ही ख़त्म हो जाए। बाद दफ़ा देखा कि बेटियां बाप और भाइयों के साथ अपनी ये बातें शेयर कर रही होती हैं, तो ये थोड़ा सा इस्तेमाल होता है इस चीज़ में, हद में रहते हुए उनको अच्छे तरीके से रखा जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि उनको कंपनी देनी चाहिए। आज के दौर का जो मसला है, जो बच्चे का, बच्चे माँ बाप से क्या चाहते हैं, इसको यानी देखने के लिए हम सबको सोचना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं। एक पोएम आपके साथ शेयर करते हैं, यानी इंग्लिश की है। अमूमन हम बच्चों को कैसे बहलाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हमसे क्या चाहते हैं।
What shall I give to one small boy? A glamorous game, a tinsel toy, a Barlow knife, a puzzle cake, a train that runs on a curving track, a picture book, a real-life pet. No, there's plenty of time for such things yet. Give him a day for his very own, just one small boy and his dad alone, a walk in the woods, a romp in the park, a fishing trip from dawn to dark. Give the gift that only you can, the companionship of his old man. Games are outgrown and toys decay, but he will never forget if you give him a day.
बाप बच्चों को खिलौनों से खुश करना चाहते हैं, और बच्चों को क्या चाहिए? वक्त चाहिए। तो अगला नुक्ता क्या है कि रिस्क के हसूल में इतनी मेहनत करें कि बच्चों को वक्त दे सकें। हर चीज़ का इलाज खिलौने, पजल्स और गेम्स नहीं। मैं देखती हूँ कि ये एक गिल्टी कॉन्शियस होता है माँ बाप के दिल में कि हम वक्त नहीं दे रहे तो इन चीज़ों से बहलाते हैं। और आप देखते हैं कि घर भरे हुए हैं। बाज़ घरों में जाएं तो वहशत होने लगती है, इतने खिलौने, इतनी चीज़ें कि जगह नहीं लगती देखने की कि कहाँ कोई और चीज़ आएगी। और वजह क्या है कि वो मेकअप किया होता है अपनी कमी को, टीवी को बेबी सिटर बना दिया आज के दौर में। हमें तंग नहीं करो, जाओ कार्टून देख लो, ये क्या है? आप अपना वक्त दीजिए। पहले दौर में तो इसमें माँ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना होता था, लेकिन अब इसकी भी ज़रूरत महसूस होती है कि माएँ भी अगर माल कमाने में लग गई तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा। इनको तो गोद चाहिए थी, इनको तो मोहब्बत चाहिए थी और हमने ये वक्त उनका दे दिया किसी और को। यकीन करें कि जो बच्चे माँ बाप के साथ पलते हैं उनका, और वो बच्चे जो बेबी सिटिंग में पलते हैं, चाहे वो बेबी सिटिंग उनकी फुफो करे, उनकी खाला करे, दादी करे, नानी करे, वो नहीं हो सकती जो माँ करती है। ये एक फितरत का असूल है, जितना ज़्यादा बच्चों के साथ इस तरीके का मामला करेंगे उतना ही उनकी शख्सियत में अच्छा असर आता है। फिर इसी तरह बातें तो बहुत सारी हैं, ये मज़मून बहुत वसी है, कुछ इसमें लिंक्स भी हैं अगर आप चाहेंगे तो उसमें मज़ीद दी जाएंगी कि एज वाइज डिवाइड किया गया कि किस एज के साथ बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। फिर इसी तरह यह कि मतलब उनकी नफसियाती मसाइल कैसे हल किए जाएँ, उनके अखलाकी कैसे वसाइल हल किए जाएँ। लेकिन असल सारी बातों को अगर आपने जो थीम समझ लिया है तो वो यही है कि बच्चों को वक्त दिया जाए और उनको अल्लाह के दीन की यानी रोशनी में पाला जाए। एक बड़ा नेचुरल वे ऑफ लिविंग जो है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होता है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो कभी पेप्सी नहीं मांगता, वो तो दूध ही पीता है, हम पेप्सी पिलाते हैं। कोई बच्चा चॉकलेट नहीं मांगता, हम देते हैं। फिर बाद में अगर बच्चे ख़राब होते हैं या बिगड़ते हैं तो उसके अंदर नुकसान किसका होता है। और याद रखिए कि घर टूटते ही तब है कि जब घर में रहने वालों का ताल्लुक कमज़ोर होता है। इस वक्त मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है इस मौजू पे, क्योंकि कभी इस तरह की बात अपने घरों में नहीं देखी गई थी जो अब देखनी पड़ती है। माँ बाप जब वक्त नहीं देते, बच्चे गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करना, ये चीज़ भी पॉइंट आउट करने की है कि बाज़ दफ़ा आप देखिए कि बच्चे पूरा पूरा दिन कंप्यूटर्स पे रहते हैं। माँ बाप को चेक करना चाहिए कैसे है। पहली तो बात है कि दोस्ती करके करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपसे छुपाएंगे नहीं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि घरों में कंप्यूटर जो रखा होता है वो इस रुख पे रखा होता है कि कमरे में जाएं तो पता नहीं चलता कि वहाँ क्या देखा हुआ है। तो मैं इस पे हमेशा यही लोगों को टिप देती हूँ कि आप अपने कंप्यूटर रूम्स के जो कंप्यूटर वो इस तरह से रखें कि जब कोई बैठा हो तो उसकी बैक हो आपकी तरफ लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन दिखे। तो एक खौफ तो ज़रूर दिल में होगा ना कि कोई ना कोई आ सकता है, लेकिन वही बात है कि इससे बड़ा खौफ तो फिर अल्लाह ताला का खौफ है। जब माएँ मेहनत करती हैं अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन कोशिश को कबूल कर लेते हैं, बच्चों को जो सिखाएं वो सीख लेते हैं। क्या हमारा दिल नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं कि जो लोगों की हालत संवारने वाले और उनको बेहतर करने वाले। कि बाज़ बच्चे आप देखिए कि अपनी उम्र से भी बड़े काम करने लगते हैं और हम उन बच्चों को देखते हैं तो रश करते हैं कि इनकी माएँ कैसी। मेरा नहीं ख्याल कि माओं की तरफ तवज्जो जाती है, हाँ एक शिकवा पैदा हो जाता है कि हमारे बच्चे तो इतने बड़े हो गए इनको तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन यकीनन इसमें माएँ होंगी कि जो बच्चों की तरबियत करती हैं और उनको यानी सिखाती हैं। अमूमन बच्चों की ज़ुबानें बिगाड़ देते हैं, उनको फजूल जुमले सिखाते हैं, फिर बेकार किस्म की चीज़ें वो देखेंगे तो वो उसी के साथ बोलने लगते हैं। लेकिन जब बचपन से माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चा भी कुरान पढ़ता है। एक बच्ची थी तो वो जब मतलब उसने कुरान पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद जब वो सूरत कहफ पे शायद पहुंची, कोई एक सूरत थी, तो वो उस बच्ची ने दिनों में याद कर ली। तो उनकी टीचर बड़ी हैरान थी कि आप कैसे, तो कहती थी कि मुझे पहले से आती है। तो बाद में पता चला जब माँ से बात की तो माँ कहती हैं कि जब ये प्रेग्नेंट थी वो खुद उसके लिए तो वो ये सूरत बहुत पढ़ती थी। कोई होता है एक अपना याद करने का या कुछ, तो वो माँ के पेट से बच्चे ने याद कर ली। अब आप देखिए कि असल बात तो ये ना कि हम क्या करते हैं। निक नेम जो है वो रखने चाहिए कि जिससे फिर मजीद मोहब्बत हो, अच्छा लफ्ज़ हो, यानी उसी लफ्ज़ का कोई मतलब निकलता हो। बेकार बेमकसद नाम रखेंगे तो अवॉइड करना चाहिए, मतलब वाला नाम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी वरना तो फिर ये कि हराम हलाल का मसला तो नहीं है, लेकिन बच्चा भी फिर वो वैसे ही हरकतें करेगा। अगर नाम निकनेम बहुत ही अजीब सा होगा तो बच्चा भी अजीब होगा। मुसलमान का हर काम बामकसद होता है। ठीक है, इंशाल्लाह पे यहाँ पे अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो बात भी कही सुनी उसको आसान कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सवाल रह जाता है कि जो बच्चे बिगड़ चुके हैं फिर उनका क्या करें हम ना, तो मैं हमेशा उसके लिए यही कहती हूँ कि माफ़ी मांग लें। बच्चों को बिठाएं घर में और उनसे कहें कि देखो हमें खुद भी नहीं पता था, हमने तुम्हारा हक नहीं दिया, तुम हमें माफ़ करो और मिल के दीन का सफ़र शुरू करते हैं। आप देखिए इतनी जल्दी उनके दिल पिघल जाएंगे कि जो बहुत ज्यादा अगर रौनक भी थी उनके दिल में, तो आपकी इस बात से उनके दिल जो है वो नरम हो जाएंगे, बजाय इसके कि अपने आप को बहुत ऐसा साबित करना कि हमने तो कभी कोई काम गलत किया ही नहीं था। हाँ किया था, लेकिन हम शर्मिंदा हैं, हमने चोट खाई तुम तो नहीं खाना चाह रहे, हमने वक्त ज़ाया किया तुम तो नहीं करना चाहते। इस तरह से बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खुद ब खुद उनके दिलों को हिदायत की तरफ ले आएगा। इंसान से अगर आपको कुछ काम है ना, तो पहला काम उसका क्या होना चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करें, मांगे ये दुआ कि अल्लाह ताला मैं उससे बात करने वाली हूँ तो मेरी बात को आसान करना। और आप देखें कि रब्बी श्राहली सदरी में यही कहते हैं ना कि यस्सिर ली अमरी, मेरा दिल मेरा काम आसान कर दे। फिर उसके बाद उनकी उम्र को उनकी तबीयत को सामने रखते हुए उनसे बात करें, और सबसे खूबसूरत चीज़ तो फिर वही है कि इस किताब से जोड़ दें। बराह रास्त बात ना करें, तनकीद का अंदाज ना रखें, मोहब्बत से हमदर्दी से अपनी आवाज़ में सोच लाएं। दिल में सोच आएगा तो आवाज़ में खुद ही आ जाएगा। नफरत करना छोड़ दें ऐसी चीज़ों ऐसी बातों से जिससे कि फिर लोग और दूर होने लगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद बखुद उनको दीन की तरफ लाएगा। और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करें। मैंने देखा है कि लोग सबसे ज़्यादा ये पसंद करते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि मैंने ये दीन की चीज़ सीखी तो मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे इस कुरान से ये मिला। तो खुद बहुत लोग खामोशी से आपके पीछे चलने लगेंगे, हुक्म देंगे तो नहीं मानेंगे। अगर आप देखें कि अल्लाह ताला ने तो एक पूरा नया सेटअप दे दिया ना, रिश्ता अच्छी जगह हो जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम चूंकि शुरू में गलतियां कर चुके होते हैं, फिर इसकी वजह से खराबियां आती हैं। जब भी कोई बहन परेशान होती हैं अपने शौहर के मामले में या बच्चों की तरबियत पे, तो मैं पूछती हूँ कि सोचें पहली गलती क्या हुई। तो वही बात है कि इंतखाब दुरुस्त नहीं था। और वो क्यों दुरुस्त नहीं था? कि हम खुद ठीक नहीं थे। अब हो गए, अल्लाह ताला उनको भी कर देगा। सब्र, हिम्मत, जिस चीज ने आपको बदला वही दूसरों को बदलेगी। आप किसी की बातें सुन के दीन पे नहीं आए, आपने रब का कलाम सुना है। इसी तरह जब लोग भी रब का कलाम सुनेंगे तो वो जुड़ेंगे। कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें जो उन तक रब का कलाम पहुंच जाए। नफिल पढ़ के अल्लाह से मदद मांग के काम शुरू करें कि अल्लाह मैंने इस बंदे तक दीन का पैगाम पहुंचाना है। लिस्ट बनाएं, लिखें अपने पास, उसमें उन लोगों को सिलेक्ट करें जो वाकई आपको लगता है कि कम मुश्किलात में ना, जैसे बच्चे बड़े हो चुके हैं, फारिग वक्त है, जॉब नहीं करते, फालतू वक्त है, फिर उनको उनसे काम शुरू करें। अभी उन लोगों से बात ना शुरू करें जो बहुत घिरे हुए हैं मुश्किलात में। मिसाल है कि अगर आप उनको किसी कुरान की क्लास की दावत देते हैं, और वो क्लास होती है मंडे को, अब आप सारा दिन लगा के भी अपनी उस दोस्त से बात करेंगे ना जो जॉब करती है मंडे को, तो सारी बात के बाद नतीजा क्या निकलेगा? वो कहेगी हाँ सब ठीक है लेकिन मैं नहीं आ सकती। ऐसा काम ना करें। छोटे बच्चों वाली हैं जो परेशान हैं, कहीं नहीं जा रही, उनको कुछ और तरह से बताएं, लेकिन तरीके से, मोहब्बत से, हमदर्दी से, लोगों के हालात को अपने हालात पे क्यास करते हुए बात करें। अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह ताला आपकी बात में।